मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था जिसका टाइटल है एशिया मीडिया समिट। ये 16-15वीं कॉन्फ्रेंस थी। मैंने इसके कुछ 13-14 कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया हुआ है। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जो भारत में हुई थी और मुख्तलिफ मुल्कों में होती थी। और इसकी जो ऑर्गेनाइजर थे हैं वो है एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड डेवलपमेंट। ये मलेशिया में बेस्ड एक कंपनी है। उन्होंने मुझे दावतनामा दिया और मैंने अग्री किया और मैं फिर आई। और उसका लोकल होस्ट आमतौर पे जिस मुल्क में ये होस्ट की जाती है, लोकल मुल्क जो होता है वो उसका लोकल होस्ट होता है, उनकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो उनकी डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं इसलिए आई थी। मुझे जब मैं आई, मुझे उन्होंने कहा था आप बोलेंगी, मेरा एक सेशन था, मुझे 4 दिन का होटल में रहना था। मैं जब रिसेप्शन पे पहुंची ताज पैलेस, तो मुझसे कहा गया आपका कमरा नहीं है। मुझे आके ऑर्गेनाइजर्स ने जो AIBD के थे उन्होंने कहा कि जी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी, आप सेशन में नहीं बोलेंगी, आप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगी। और फिर उन्होंने मुझे बड़े तरीके से तमीज से ये कहा कि आप तशरीफ ले जाइए, आपके लिए हमने कोई और होटल में बंदोबस्त किया है और आप समिट में भी और कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं ले सकते। आप वहाँ बैठ के एज ए स्पेक्टेटर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया है। तो मुझे फिर वहां से रॉयल पैलेस में ले जाया गया अशोका रोड पे। अब मैं वहीं रही 2 दिन और मैंने फिर जाहिर अपना दौरा कम किया और मैं वापस पाकिस्तान आ गई।
एक चीज बताएं कि इस घटना के बाद आयोजकों की ओर से आपके कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप उन्हें आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करना पड़ा?
जी नहीं, मैंने उन्हें एक सवाल जरूर पूछा था जब ये गुफ्तगू हो रही थी मरीन से, AIBD से। मैं तो उन्हीं की मेहमान थी ना, तो उन्हीं से बात कर रही थी। मैंने पूछा कि जी ये क्यों हो रहा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। मैंने कहा ये जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं मेहमान हूँ, मुझे आपने बुलाया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो खामोश रहे। और फिर ये ऐसा मौका बन गया था कि सिवाय इसके कि बदमजगी और बढ़ जाए। तो जब आप किसी घर जाते हैं और वो कहते हैं आप चले जाएं, तो फिर आप चले जाते हैं ना। तो फिर मैं निकल गई वहां से और फिर मैंने उस तरफ का रुख ही नहीं किया।
मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपको हुकूमत हिंदुस्तान से क्या कहना है?
मैं फैज की बेटी हूँ और फैज साहब ने हमेशा अमन की बात की, प्यार की बात की, ह्यूमनिज्म की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की। हमेशा ये कहा कि हम दिल कुशादा रखते हैं, हमारा दिल खुला है। तो मैं बहसियत फैज की बेटी थी और फैज फाउंडेशन ट्रस्ट के आज भी ये कहती हूँ, हमारा दिल खुला है और हम अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में अमन हो, मोहब्बत हो और एक दूसरे की बात सुनने की हिम्मत हो, कहने की भी और सुनने की। तो इस किस्म की जो छोटी बात हो जाती है तो फिर थोड़ा सा दिल खराब हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हौसला रखें, हिम्मत रखें, दोस्ती बढ़ाएं, इससे दोनों मुल्कों का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।
आपने कहा कि फैज साहब ने अमन के बारे में लिखा है, गरीबों के बारे में लिखा है, क्रांति के बारे में लिखा
हमेशा
है।
जी हमेशा।
आप इस समय जो दोनों मुल्क हैं जिस तरह के सियासी हालातों से गुजर रहे हैं, क्या आपको फैज साहब की कोई नज्म या गजल याद आती है?
उनकी हर गजल और हर नज्म का यही आखिर में बेटा पैगाम होता है कि उम्मीद का दामन न छोड़ो, लंबी है गम की शाम मगर शाम की तो है। तो मैं तो यही कहूंगी कि उम्मीद सहर की बात सुनो, हर चीज को उम्मीद के ऊपर रखो। बुरे वक्त भी आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं। तो मैं समझती हूँ दोनों देशों की जो लोग हैं, जनता है, उन्हें उम्मीद का दामन रखना चाहिए और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट खुला रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमन होगा, दोस्ती बढ़ेगी। फैज का भी यही पैगाम है, फैज फाउंडेशन ट्रस्ट का भी यही पैगाम है और बहसियत एक माँ मेरा यही पैगाम।
मैम एक चीज बताएं कि आज सोशल मीडिया से लेकर भारत और से लेकर पाकिस्तान तक फैज के जो नज़में थीं फैज साहब की, वो नारों में तब्दील हो गई हैं ऐसे, लेकिन लेकिन राजनेताओं से लेकर छात्र नेताओं तक उनके आदर्शों के प्रति समर्पण की भावना किस तरह की है?
देखिए ये जरूर है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, ये जरूर है, ये स्लोगन बन गए हैं। अगर आपका ये मतलब है, हम देखेंगे लाने में, हम भी देखेंगे ऐसा कि ये कुछ जो है माशाल्लाह इनके कुछ ऐसे शेर हैं वो जरूर स्लोगन बन गए हैं। लेकिन ये जरूरी है कि उनका जो पीछे इनके जो पैगाम है, इसके बाद जो पैगाम है उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए, इसको सिर्फ स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फैज साहब ने अपने जो बातें की हैं, जो लिखा है, दिल से लिखा है और बहैसियत इंसान लिखा है। और आप देखें, ये कुछ उनको आज फौत हुए हैं, उनको गुजरे हुए 35-34 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी बातें ऐसी होती हैं जैसे लगता है आज ही के लिए लिखे हैं। तो एक शख्स जो इतना फ्यूचर में देख सकता हो, इतना समझ सकता हो कि देखो ये आज की बात नहीं है, ये और आगे 3-4-50 साल की बात है, तो मेरे ख्याल में हमें भी यही सोचना चाहिए कि आज जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ, चलो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर ये हुई तो इसका फिर आगे देखें, इसके असर बहुत बुरा होगा। तो ये
मैम,
पहले कोई एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए।
एक बार शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था कि विभाजन के दौरान वो फैज को ले जाएं, वो सबको ले जाएं, लेकिन भारत से फैज को, हिंदुस्तान से फैज को कोई नहीं ले जा सकता। और आप देख रही हैं कि आज भी भारत में करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, युवा हैं।
बेशक
सवाल मेरा ये है
मैं
कि
आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, फैज हमारा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया का है। फैज बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, और उसमें भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा।
मैं ये पूछ रहा था कि जब एक समय था जब पाकिस्तान में फैज़ की नज़में को बोलना भी
बेशक
मना था एक तरह
जी
से,
जी 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 जी
तो वो पाकिस्तान
जी
में
जी
जनरल
जी
ज़िया-उल-हक का दौर हुआ करता था,
जी बिल्कुल
और उन्हें फैज़ साहब
बिल्कुल
को
था,
जनरल ज़िया-उल-हक के राज में पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा था। उन्हें 4 साल तक बेरोत में
बिल्कुल बिल्कुल
निर्वासन में अपना जीवन गुजारना पड़ा। लेकिन
जी
आज के
बिल्कुल।
पाकिस्तान में फैज़ साहब को आप कहाँ पाती हैं?
मैं तो ये कहूंगी कि फैज साहब को, कमाल की बात है कि दिन ब दिन, ये मैं अपने अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ, दिन ब दिन जितना मैं यहाँ बढ़ावा देख रही हूँ उनका, जितना प्यार मैं देख रही हूँ, जितना जो नौजवान है हमारा, यंग पीपल, वो जितना फैज पढ़ रहे हैं, वो कमाल है। क्योंकि वो ऐसी बातें लिखी उनमें नजर आती हैं, ऐसे पैगाम उनको नजर आते हैं जो उनकी दिल की बात करते हैं, और यूं लगता है जैसे उनके लिए लिखे हुए थे, हालांकि लिखे 50 साल पहले थे। इस वक्त पाकिस्तान में, और मैं खुले दिल से कहती हूँ, फैज पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, फैज के ऊपर रिसर्च हो रही है, PhDs हो रही हैं, और उनको तकरीबन हर शख्स, जो चाहे सियासत में हो, चाहे औरत का मसला हो, हर तरह से वो उनकी बातों को या उनकी जो पोइट्री है उनको कोट किया जा रहा है। तो मैं ये फैज को कम होते नहीं, फैज का फैज बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और इस बात में खुशी होती है क्योंकि उनका जो पैगाम है वो पीस है, वो अमन है, वो प्यार है, वो दोस्ती है। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छा आइन है, जिसको हम कहते हैं खुश आइन बात है, अच्छी बात है कि फैज को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और समझा जा रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त फैज इज ट्रेंडिंग, बड़ा अच्छा
मैम आप
लगता है।
कह रही थी कि फैज़ युवाओं को आंदोलित करते हैं, उनकी एक गज़ल है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आज फैज़ साहब के
बेशक
इंतकाल को इतने बरस बीत चुके हैं, आपको उम्मीद है कि क्या कभी दोनों मुल्कों के युवा आपसी मतभेद भुलाकर अमन के रास्ते पर ले
जरूर
जाएंगे?
जरूर ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, ये होगा, और ये बीच में होता रहता है, होता रहता है, टूटता रहता है, होता रहता है, टूटता रहता है। वाजपेयी साहब आए थे ना यहाँ, बस पे आए थे, मैं उस वक्त पीटीवी में थी, मैंने खुद उनका स्वागत किया था वागा पे, मेरे कैमरे वहां खड़े थे, उनको गवर्नर हाउस हम लेके, यानी हमारे कैमरे उनके साथ गए थे, फिर वो मोदी साहब आए थे ना, तो जरूर होगा, ये बस ऊंच नीच होती रहती है और ये होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ये खुश, ये जरूर अच्छे दिन आएंगे, अमन होगा, और ये इसी तरह होगा अगर पीपल टू पीपल डायलॉग खुला रहेगा, और अगर लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बांटते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो तभी तो ये डायलॉग चलता है ना। अगर आप ब्लॉक कर देंगे उसको, या किसी को बोलने से मना कर देंगे, किसी को निकाल देंगे, तो इस तरह तो डायलॉग नहीं चलेगा। तो उस डायलॉग के लिए दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। ये फैज का मिसरा है, हम दिल कुशादा रखते हैं, कुशादा मैंने खुला, ये फैज का मिसरा है, तो दिल को खुला रखना चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए कि उसमें लोगों की बात आप सुने और उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि हर बात आपकी मर्जी की नहीं होती, तो लिहाजा आपको वो भी सुननी पड़ती है। ये होगा, अमन आएगा, यहाँ भी आएगा, अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इकट्ठे बैठ सकते हैं, अगर जर्मनी की दीवार टूट सकती है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्यों दोस्त नहीं बन सकते, बनेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।